अध्याय 11 प्राचीन भारत में दास प्रथा। भूमिका: दासता वह संस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधीन हो जाता है। इस दासता का मूल युद्ध है। विजेता पराजित व्यक्तियों को पूर्णतः अपने अधिकार में कर लेता था। बाद में ऋण ना चुका सकने पर, शर्त हार जाने पर या अकाल की अवस्था में भरण पोषण में असमर्थ व्यक्ति दूसरे के दास बन जाते थे। पश्चिमी देशों में इस प्रथा का दासों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। भारतीय सभ्यता के विकास में दास प्रथा का इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अति प्राचीन काल से ही भारतीय समाज का अंग रही है। विभिन्न कालों में दासों की स्थिति। नंबर एक, प्रागैतिहासिक काल। भारत की सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जिसके विकसित रूप की अवधि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। हड़प्पा के समाज को चार श्रेणियों में बांटा गया है: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और कारीगर। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के बाहर 16 ऐसे मकान मिले हैं जिनमें प्रत्येक में दो कठोरियां थी। इनके निकट ही एक कारखाने के भग्नावशेष मिले हैं, जहां अभिलेखी ओखलियों में गेहूं को कूटकर आटा तैयार किया जाता था। इसी आधार पर पिगट ने इनको मजदूरों का मकान कहा है। ईरान की खाड़ी में देहरीन के टापू पर हड़प्पा की मुहरे के अनुरूप मुहरे मिलती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय और पश्चिम एशिया के इस काल में घनिष्ठ संबंध, व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में दास प्रथा विद्यमान थी, अतः यह अनुमान लगाना अनुचित ना होगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समाज में भी दास प्रथा विद्यमान थी। संभवतः कुछ दास इन दो कोठरी वाले मकानों में रहते थे। नंबर दो, वैदिक काल। लगभग 1750 ईसवी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋग्वेद में आर्यों और दासों के बीच संघर्ष का अनेक स्थलों पर उल्लेख है। जो अनार युद्ध में हार जाते थे, उन्हें बंदी बनाकर दास बना लिया जाता था। ये दास जीवन भर आर्यों की सेवा करते थे। ऋग्वेद के एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि दासों को पशुओं की भांति भेंट में दिया जाता था। राजा लोग दासियों को भी उपहार के रूप में देते थे। ऋग्वेद के पहले तथा दसवें मंडल में दास शब्द का प्रयोग परिचारक के अर्थ में हुआ है। विद्वानों का मत है कि ये दोनों मंडल बाद की रचनाएं हैं। संभवतः इस काल में दास सभी शिल्पों में आर्यों की सहायता करते थे, क्योंकि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय इस समय पशुपालन था और अनार्य पहले से ही शिल्पों में निपुण थे। नंबर का ऋग्वेद के वर्णों से ज्ञात होता है। इस काल के अंत में आर्यों के समाज में दासों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। संभवतः उन व्यक्तियों को भी दास बना लिया जाता था जो ऋण नहीं चुका पाते थे। आर्य स्वामी दासों को अपनी संपत्ति समझकर उन्हें चाहे जिसको दे देते थे। पुरुकुत्स ने 50 दासियों को इसी प्रकार दे दिया था। ये दासियां अधिकतर घर का काम करती थी। दास राजाओं के अतिरिक्त संभवतः पुरोहित और अभिजात वर्ग के क्षत्रियों की भी सेवा करते थे। नंबर खारी की वेद में कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि तत्कालीन अर्थव्यवस्था में दासों का प्रमुख भाग था। वे बड़ी संख्या में कृषि उत्पादन में या अन्य उद्योगों में लगाए जाते थे। इसका कोई लक्षण उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद के पूर्वांश से भी ज्ञात होता है कि दासों की अपेक्षा दासियों की संख्या अधिक थी और वे सदा घर का काम करती थी। गा ब्राह्मण ग्रंथों में जिन अनार्यों को शूद्र कहा गया है, वे सभी दास ना थे। संभवतः उनमें कुछ स्वतंत्र थे, जैसे कि काठक संहिता शूद्र को अग्निहोत्र के लिए दूध दुहने का अधिकार नहीं देती, किंतु शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। जिन शूद्रों के लिए यज्ञ की स्थापना की जाती थी, वे दास नहीं हो सकते, किंतु ऐतरेय ब्राह्मण में शूद्रों को यथा काम वद्य अर्थात इच्छा अनुसार पिटने योग्य कहा गया है। संभवतः यहाँ शुद्ध से अभिप्राय उन अनार्यों से है जो आर्यों के दास बना लिए गए थे। छंदोग्य उपनिषद में दासियों की गणना अन्य संपत्ति जैसे गाय, बैल, घोड़े, हाथी, सोना, खेत और मकानों आदि के साथ की गई है। वैदिक काल में दास धन देकर दासता से मुक्त हो सकता था। इसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि उन्हें चाहे जब निकाला जा सकता था, वे सदा दूसरों की सेवा करते थे। उन्हें संपत्ति रखने का भी अधिकार ना था। प्रोफेसर कीत का मत था कि उत्तर वैदिक काल में भूमि के स्वामी अधिकतर दासों से कृषि कार्य कराते थे, किंतु उपलब्ध साक्ष्य से उनके इस कथन की पुष्टि नहीं होती। उत्तर वैदिक काल में अधिकतर दास घर के कामों जैसे कि धान कूटना, चक्की पीसना, पानी भरना या यज्ञ के समय नौकर का काम करते थे। घा ऐत्रेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि अंग के राजा ने आत्रेय पुरोहितों को 10,000 दासियां दी थी जो अनेक देशों से पकड़कर लाई गई थी। ये दासियां निश्चय ही उन परदेशों की व्यक्तियों की स्त्रियां रही होंगी जिन्हें अंग के राजा ने जीता था। ये दासियां घर का काम तो करती ही थी, किंतु कुछ धनी परिवारों में भोग की वस्तु भी समझी जाती थी। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में दासी पुत्रों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दासी पुत्रों को समाज में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रकार वैदिक काल में अधिकतर दास युद्ध बंदी थे, किंतु ऋग्वेद के अच्छा सूक्त पासा खेलने संबंधी और बृहदारण्यक उपनिषद में जनक के उदाहरण के आधार पर डॉक्टर घोषाल का मत है कि इस काल में भी कुछ व्यक्ति ऋण ना चुका सकने पर और कुछ स्वेच्छा से दास हो जाते थे। नंबर अंगा, महाभारत में जिन दासों का वर्णन है वे सभी अनार्य ना थे। संभवतः इस समय तक अनेक अनार्य व्यक्ति भी आर्यों के समाज का अभिन्न अंग बन गए थे। कुछ विद्वानों का मत है कि राम और कृष्ण दोनों में शुद्ध आर्य रक्त ना था। दास का अर्थ इस काल में वह व्यक्ति हो गया था जो पूर्णतः अपने स्वामी के अधीन हो। इस काल में दास का स्वामी उसकी पत्नी का भी स्वामी समझा जाता था। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार गए थे तो कौरवों ने उसके साथ जो व्यवहार किया उससे दासी की हीन अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दासी की सत्त्व की रक्षा का कोई उत्तरदायित्व समाज पर ना था। दासी को समाज में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में किसी भी वर्ण का व्यक्ति दास हो सकता था और सभी शूद्र दास ना थे। आर्य शब्द से चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बोध होता था। महाभारत में चार प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। नंबर एक, युद्धों में बंधी। भीमसेन ने जयद्रथ को हराकर उसे अपनी दासता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। नंबर दो, जुए में हार कर। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए थे तो उसे दासी ठहराया गया था। नंबर तीन, दान में दी हुई दासियां, जैसे कि युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणों को दी थी। नंबर चार, खरीदे हुए। एक ब्राह्मण जब राक्षस को देने के लिए दास ना खरीद सका तो वह अपने परिवार के सदस्य को ही उस राक्षस को देने का विचार करता है। इससे स्पष्ट है कि दास खरीदे भी जा सकते थे। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल में सभी दास शूद्र ना थे। उनमें अनेक क्षत्रिय थे जो युद्ध में बंदी किए गए थे। ऋण ना चुका सकने पर जो दास होते थे वे व्यक्ति भी शूद्रों से भिन्न रहे होंगे। संभवतः उच्च वर्गों के दास कुछ समय बाद धन देकर स्वतंत्र हो जाते होंगे, किंतु नीच वर्णों के लोग अपनी हीन आर्थिक दशा के कारण आजीवन दास ही रहते होंगे। नंबर तीन, सूत्र ग्रंथों तथा प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के आधार पर लगभग 600 ईसा से 300 ईसा पूर्व दासों के कार्य। इस काल में दास प्रथा का अधिक विस्तार हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। धर्म सूत्रों से ज्ञात होता है कि इस काल में ऐसे ब्राह्मण भी थे जिनमें प्रत्येक के पास 1,000 बैल थे। ये ब्राह्मण निश्चय ही सेवकों और दासों से खेती कराते होंगे। लाटयायन श्रौत सूत्र में अंत और फल से श्राद्ध दो दास दिए जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार सांख्यायन श्रौत सूत्र में लिखा है कि भूमि के साथ दास भी दिए जाएं। टीकाकारों के अनुसार ये गर्भदास थे अर्थात वे बालक जिनके पिता या माता दास या दासियां थी। नंबर 4, पाली ग्रंथों में ऐसे भूपतियों का उल्लेख है जिनके पास 800 एकड़ से 8000 एकड़ तक की भूमि थी। वे अपनी भूमि पर दासों और मजदूरों से खेती करवाते थे। सुत्त निपात में काशी भारद्वज नामक ब्राह्मण का उल्लेख है जिसकी भूमि को 500 हल जोतते थे। साक्य और कोलियरगढ़ राज्यों में अभिजात वर्ग के क्षत्रिय भी अपनी भूमि पर कृषि कार्य दासों और सेवकों से कराते थे। जातकों से ज्ञात होता है कि साधारण किसान भी कभी कभी किसी कार्य में दासों की सहायता लेते थे। 6, बौद्ध त्रिपिटक और जातकों में ऐसे धनाढ्य व्यापारियों का उल्लेख है जो कि 40 से 80 करोड़ तक स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी थे। अनाथ पिंडिक ने बड़ी धनराशि देकर जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। ऐसे धनी व्यापारी अवश्य ही अपना कुछ घर का कार्य दासों से कराते रहे होंगे, परंतु व्यापार और उद्योग में दासों की बहुत कम प्रयोग किया जाता था और कला और शिल्प पैतृक व्यवसाय थे। उनमें अधिकतर शूद्र अपनी श्रेणियों में संगठित होकर कार्य करते थे। जा धर्म सूत्र में जिन दास दासियों का उल्लेख है वे घर के नौकर थे। वे भी भोजन बनाते, पानी लाते, चावल कूटते, खेत में भोजन पहुंचाते, भोजन के लिए थाली कटोरी रखते, स्वामी का पंखा जलते, भोजन के लिए पटरे साफ करते और आंगन साफ करते थे। परिवार के लोगों के साथ वे अतिथियों के भी पैर धोते, उसके लिए भोजन बनाते, पानी लाते थे। यदि कोई शूद्र अतिथि आ जाए तो दास ही उसका आतिथ्य करता था। उसे झूठा भोजन और स्वामी के पहने हुए कपड़े दिए जाते थे। दास मालिक और उसकी पत्नी के पैर भी धोते थे। घर के नौकरों और इन दासों में केवल एक अंतर था, ये दास स्वतंत्र नहीं थे, जबकि नौकर नौकरी छोड़कर कहीं भी जा सकता था। दासियां पानी भरकर लाती, धान कूटती, घर की सफाई करती। कुछ कृष्णवर्णा स्त्रियां इस काल में अभिजात वर्ग के व्यक्तियों के यहाँ उपपत्नियों रखेल स्त्रियों के रूप में भी रहती थी। झा राज परिवारों में भी दासियां राजा और रानी के बिस्तर बिछाती, उन्हें स्नान करवाती, उन्हें सुगंधित लेप तैयार करती, माला बनाती, घर साफ करती और संदेश ले जाने का कार्य करती थी। दास अतिथियों के पांव धोते और उनका स्वागत करते थे। वे भिक्षुओं के लिए बिहारों में भोजन पहुंचाते और यज्ञों के अवसरों पर नौकरों को करने योग्य सभी कार्य करते थे। यहाँ जातकों से ज्ञात होता है कि कुछ स्वामी जब उनके घर पर कार्य ना होता तो अपने दास दासियों को दूसरे लोगों के यहाँ काम करने भी भेजते थे। उनसे जो आय होती थी उसे ये दास दासियां अपने स्वामियों को देते थे। यदि वे ऐसा ना करते तो उन्हें उनके स्वामी पीटते थे। दासों के प्रकार। बोधायन धर्म सूत्र से ज्ञात होता है कि कुछ व्यक्ति इस काल में धन देकर स्त्रियों को खरीदते थे। ये स्त्रियां धरोहर भी रखी जा सकती थी। इस काल में कुछ मनुष्य दासों का व्यापार भी करते थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस काल में खरीदे हुए दास और दासियां समाज में विद्यमान थे। पाली धर्म ग्रंथों में सबसे पहले दासों के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है। विनय पिटक में 3 प्रकार के दासों का वर्णन है। नंबर 1, घर में ही दासी से उत्पन्न। नंबर 2, युद्ध में बंदी किया हुआ। नंबर 3, धन से खरीदा हुआ। 4, दीर्घ निकाय में 4थे प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है, अर्थात जो अपनी इच्छा से दास बना हो। जातकों में अन्य प्रकार के दासों का उल्लेख है, जैसे कि नंबर 5, भय से दासता स्वीकार करने वाला। नंबर 6, ऋण ना चुका सकने पर बना दास। नंबर 7, अपराध करने पर जिसे दंड के स्वरूप दास बनाया गया है और जो जुए में हारने पर सत्य का पैसा ना चुका सकता था। साधारणतः दासों के लिए 100 करसापण रहा होगा। विनय पटक में एक ऐसे सेठ का वर्णन मिलता है जो यदि जीवक वैद्य उसके शरीर के दर्द को ठीक कर दे तो उसका दास बनने को तैयार था। 9, मृत्युदंड से बचने के लिए भी अनेक अपराधी दास बन जाते थे। 10, अनेक लोग दूसरों को दान में भी दास देते थे। इस प्रकार इस काल में समाज में अनेक प्रकार के दास थे, किंतु उनमें अधिकतर घर का काम करते थे। कुछ खेती के काम में भी किसानों की सहायता करते थे, किंतु उनकी संख्या अधिक ना थी। जातकों में दास कर्मकार शब्द ऐसे दासों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो भोजन के लिए दास बनना स्वीकार करते थे। दासों के प्रति व्यवहार। अपस्तंभ ने लिखा है कि चाहे गृहस्थ स्वयं भूखा रहे, अपनी पत्नी व बालकों को भूखा रहे, किंतु उसे दास को भूख कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। यदि दास विद्ध हो जाए तो स्वामी का कर्तव्य था कि वह उसका भरण पोषण करे। महात्मा बुद्ध ने दासों की दशा सुधारने के लिए कुछ नियम बनाए थे, वे इस प्रकार हैं। दासों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम देना चाहिए, उन्हें भोजन और वस्त्र देना चाहिए। दासों की बीमारी में स्वामी को उनकी सेवा सुश्रूषा करनी चाहिए। उनके प्रति स्वामी और स्वामिनी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दास को स्वामी से पहले उठना चाहिए, उनके पश्चात सोना चाहिए, अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, उसे सदा ही अपने स्वामी की प्रशंसा करनी चाहिए। दासों को यह समझकर कि दासता उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, अपनी वर्तमान स्थिति को धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। इस जन्म में स्वामी को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करके ही दास स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्वामी और दास दोनों के कर्तव्यों का विवेचन करके महात्मा बुद्ध ने सामाजिक असंतोष को दूर करने का प्रयत्न किया। जातकों से ज्ञात होता है कि दासों के साथ परिवार के सदस्यों की भांति ही प्रेम का व्यवहार किया जाता था। उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। परिवार के अन्य सदस्यों की भांति ही दास व्रत उपवास रखते हैं और धार्मिक उपदेश सुनते थे। कुछ दास अपनी स्वामी भक्ति के कारण अपने स्वामी के बहुत विश्वसनीय बन जाते थे। उनके परामर्श का आदर किया जाता था। उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि साधारणतः दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था, किंतु दासों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त न थे। स्वामी उन्हें मार सकता था, पिटवा सकता था और जला भी सकता था। दासों के प्रति व्यवहार स्वामी के स्वभाव पर भी बहुत कुछ निर्भर करता था। स्वामी तभी तक दास के साथ अच्छा व्यवहार करता था जब तक वह अपना कार्य ठीक करता था। कुछ स्वामिनियां अपने दासियों को रस्सी से पीटती थी। स्वामी के आदेश की अवहेलना करने पर दास को पीटा जाता था और उसके स्वामी दास की नाक, हाथ, पैर भी काट सकते थे। पशु, मकान, खेत और सोने की भांति दास भी स्वामी का संपत्ति समझा जाता था। जो दास भाग जाते थे उन्हें स्वामी पकड़ कर ला सकता था। स्वामी उन्हें दूसरे व्यक्ति को भी दे सकता था और उन्हें जान से भी मार सकता था। स्वामी के दुर्व्यवहार से तंग आकर कुछ दास भागने का प्रयत्न करते, कुछ आत्महत्या करते और कुछ स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करते, किंतु दासों का कोई संगठन ना होने के कारण उनके स्वामी सरलता से दासों के विद्रोह को दबा देते थे। नंबर 4, मौर्य काल, लगभग 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। दासों के कार्य। एरियन ने मैगस्थनीज के आधार पर लिखा है कि सब भारतीय स्वतंत्र हैं, उनमें से एक भी दास नहीं है। भारतीय विदेशियों को भी दास नहीं बनाते, फिर अपने देशवासियों को दास बनाने का तो प्रश्न ही नहीं। इसका यह अर्थ है कि मैगस्थनीज यहाँ दास का वह अर्थ ले रहा है जिसमें दास को स्वामी की चल संपत्ति समझा जाता था और उसके निजी कोई अधिकार नहीं होते थे। इस अर्थ में भारत के दास गुलाम नहीं थे, क्योंकि उनमें वे गंदे काम नहीं कराए जा सकते थे जो पश्चिमी देशों के स्वामी अपने गुलामों से कराते थे। कौटिल्य ने स्पष्ट लिखा है कि जिस दास को धरोहर के रूप में रखा गया है, उससे धरोहर रखने वाले व्यक्ति को गंदे काम जैसे सौ ले जाना, झाड़ू लगवाना, मलमूत्र उठवाना, जूठा उठवाना अवैध है। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। दासों की संख्या भारत में पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत कम थी और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों पर निर्भर ना थी। भारत में कुछ दशाओं में दास संपत्ति के स्वामी भी हो सकते थे, स्वतंत्र भी हो सकते थे। उनका कौटिल्य ने दासों और कर्मकारों के लिए जो नियम बनाए हैं उनसे स्पष्ट है कि इस काल में दास खेती का काम भी करते थे, राज्य भी अपनी भूमि पर दास और कर्मकारों द्वारा खेती कराता था। इस समय राज्य कुछ विद्वान ब्राह्मणों और उच्चाधिकारों को वेतन के बदले भूमि भी देता था, जिस पर संभवतः दास और मजदूर कार्य करते थे। संपन्न गृहपति भी कृषि कार्य के लिए दासों और मजदूरों का उपयोग करते थे। नंबर खा, घरेलू कार्य में लगे दासों के विषय में अर्थशास्त्र से अधिक जानकारी मिलती है। सशस्त्र दासियां राजा की अंग रक्षिका होती थी। वे राज परिवार के सदस्यों को स्नान कराती, शरीर पर मालिश करती और संगीत तथा अन्य कलाओं के द्वारा राजा का मनोरंजन करती थी। जब वे विगत यौवना हो जाती थी तो उन्हें भोजन बनाने, कोषागार की देखभाल करने और काटने बुनने में लगाया जाता था। दासों के निजी स्वामी उनसे कार्य करवाते थे। इनकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र में नहीं मिलती। नंबर का, दासों के प्रकार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में निम्नलिखित 8 प्रकार के दासों का विवेचन किया है। नंबर 1, गृहजात, घर में पैदा हुआ अर्थात दासी से उत्पन्न या उदर दास। नंबर 2, दायागत, पिता से दास के रूप में मिला दास। नंबर 3, लब्ध, दान में प्राप्त हुआ दास। नंबर 4, कृत, खरीदा हुआ दास। नंबर 5, ध्वजाहत, युद्ध में बंदी बनाया गया दास। नंबर 6, आत्मविक्रयी, आत्मविक्रयी, अपने आप को स्वयं बेचने वाला दास। नंबर 7, आहितक, जो ऋण के बदले धरोहर रखा गया हो। नंबर 8, ठंड प्रणीत, दंड के परिणाम स्वरूप जो दास बनाया गया है। कौटिल्य ने लिखा है कि प्रायः स्वतंत्र व्यक्ति या आर्यावर्त के रहने वाले को या अल्पवयस्क शूद्र व्यक्ति को कोई दास बनाकर ना बेच सकता था और ना धरोहर रख सकता था। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता तो उस पर सरकार 12 पर जुर्माना करती थी। उच्च जाति के लोगों के व्यक्ति को उनके संबंधी दास के रूप में बेचते तो उन्हें इससे अधिक दंड देना पड़ता था। कौटिल्य के अनुसार आर्य कभी किसी का दास नहीं हो सकता। यदि किसी समय आर्थिक कठिनाई के कारण कोई आर्य अपने को धरोहर रख भी दे तो उसके संबंधियों को रुपया देकर यथाशीघ्र छुड़ा लेना चाहिए। दासों के प्रति व्यवहार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दासों की स्थिति के विषय में अनेक नियम बनाए हैं। उसने लिखा है कि स्वामी को 18 वर्ष से कम आयु वाले दास से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अपवित्र काम नहीं कराना चाहिए, ना उसे विदेश में भेजना या बंधक धरोहर रखना चाहिए। अकाल स्वामी को किसी दास को बांधना भी नहीं चाहिए। जो स्वामी अपने दासों और धरोहर रखे हुए दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता उसे सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य करे। अशोक ने भी शिलालेख 9 में लिखा है कि सभी व्यक्तियों को दास के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दासियों के प्रति व्यवहार के लिए भी कौटिल्य ने विस्तृत नियम बनाए हैं। वह लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति धरोहर रखी हुई दासी के सील को नष्ट करे तो उसका वह धन नष्ट हो जाता है जिसके लिए दासी को धरोहर रखा गया था। धरोहर रखी हुई दासी के साथ यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता तो सरकार उसे कठोर दंड देती थी। यदि स्वामी और दासी से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वह दासी और उसका पुत्र दोनों स्वतंत्र हो जाते थे। गर्भिणी दासी को धरोहर रखने या बेचने पर कठोर दंड दिया जाता था। ऐसी दशा को खरीदने वाले भी दंड का भागी होता था। यदि कोई व्यक्ति दास या दासी की पुत्री का सील नष्ट करे तो उसे अर्थ दंड भी देना भी पड़ता था। साथ ही उसे उस कन्या के विवाह के लिए वस्त्र तथा आभूषण देने पड़ते थे। कारागार का अध्यक्ष किसी बंदी या धरोहर दासी के साथ बलात्कार करे तो उसे भी कठोर दंड दिया जाता था। यदि दास या दासी स्वामी की कोई वस्तु चुराते थे तो उन्हें अंग छेद या भारी जुर्माने की सजा दी जाती थी। दास को बेचा या धरोहर रखा जा सकता था, किंतु दास स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकता था। कृत दास जितने धन में उसे खरीदा गया हो उतना धन देकर स्वतंत्र हो सकता था। जो व्यक्ति स्वयं दास बनते थे वे अतिरिक्त परिश्रम से धन कमा कर या पैतृक धन देकर स्वतंत्र हो सकते थे। दंडदास अपनी परिश्रम से दंड के अनुरूप धन देकर मुक्त हो सकता था। अनुरूप निष्क्रय धन पाने पर भी यदि कोई व्यक्ति दास को मुक्त ना करे तो उस पर सरकार 12 पड़ जुर्माना करती थी। अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि मौर्य काल में दास प्रथा सुविकसित रूप में विद्यमान थी। मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। उसका यह कारण हो सकता है कि भारत में उनके साथ उस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था जिस प्रकार का पश्चिमी देशों में किया जाता था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि भारत में उद्योगों और कृषि आदि में काम करने वाले दासों की संख्या इतनी कम थी कि समाज पर उनका कोई व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता था। अधिकतर दास घर का कार्य करते थे और परिवार के सदस्यों की भांति रहते थे। उन्हें पेट भर भोजन और पहनने के लिए वस्त्र अवश्य मिलते थे। उनकी दशा पाश्चात्य देशों के दासों से बहुत अच्छी थी। नंबर 5 स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का दासों के कार्य। महाभारत तथा स्मृतियों से ज्ञात होता है कि अधिकतर दासों को घर के कामों में ही लगाया जाता था। वे गंदे काम जैसे कि झाड़ू लगाना, मलमूत्र साफ करना, लिंगों की मालिश करना आदि भी करते थे। वे कूटना पीसना आदि घर के अन्य काम तो करते ही थे, साथ ही साथ नारद 100 ईस्वी से 500 ने घर के कार्यों का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। उसके अनुसार स्वामी को पवित्र कार्य नौकरों से कराने चाहिए और अपवित्र काम जैसे कि द्वार पर झाड़ू लगाना, शौचालय व सड़क साफ करना, कूड़ा उठाना, गुप्त अंगों पर तेल की मालिश, मलमूत्र साफ करना, जूठन उठाना आदि केवल दासों से ही कराने चाहिए। नंबर 6 भारत में साधारणतः किसान अपने खेतों पर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से खेती करते थे। यहाँ की कृषि व्यवस्था दासों पर आधारित नहीं थी। मौर्य काल में राज्य बड़े पैमाने पर कृषि कराता था। संभवतः वह अन्य कालों में भी राज्य दासों की सहायता से खेती करता था। राज्य के अष्ट विध कार्यों का उल्लेख करते हुए मनु ने कृषि कार्य को राज्य का एक मुख्य कार्य बतलाया है। संपत्ति विभाग के प्रसंग में मनु ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण के कर्म से 4 वर्गों की स्त्रियों से पुत्र हो तो उनमें से ब्राह्मण पुत्र को खेती करने वाले शूद्र कोष्टक में किनास और साण मिलना चाहिए। किनास का अर्थ बुहलर ने किसी करने वाला दास बत लगता है। इसका अर्थ है कि कुछ किसान भी खेती में दासों का उपयोग करते थे। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति संन्यास छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे वे राज्य के दास बनाए जाते थे। युद्ध में जीते हुए व्यक्ति भी राज्य के दास होते थे। संभवतः मौर्य काल की भांति इस काल में भी राज्य इन दासों से अधिक कार्य कराता रहा होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घर के कामकाज के अतिरिक्त दास सीमित रूप से कृषि कार्य भी करते थे। दासों के प्रकार ईसा पूर्व 200 से 100 ईसा पूर्व। मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। नंबर 1 ध्वजाहत युद्ध के बंदी। इस काल में यह प्रथा थी कि यदि पराजित राजा भी चाहे तो विजयी राजा का दास होना स्वीकार करके अपना जीवन बचा सकता था, किंतु 1 वर्ष बाद विजयी राजा उसे दासता से मुक्त कर देता था और उसके साथ अपने पुत्र की भांति व्यवहार करता था। नंबर 2 भक्त दास। दुर्भिक्ष के समय भोजन के लिए बना दास। नंबर 3 गृहज घर में ही दासी से उत्पन्न। नंबर 4 कृत खरीदा हुआ। नंबर 5 दत्री माता पिता या संबंधियों द्वारा दिया गया। नंबर 6 दान में मिला दास। और नंबर 7 दंड दान, धार्मिक कृत्य न करने पर जुर्माने के रूप में बनाया गया दास। महाभारत में भी इन 7 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के पास निर्वाह के साधन ना होते तो वह अपने पुत्र को बेचकर या बंधक बनाकर ऋण लेकर निर्वाह करता था। नारद ने 100 ईस्वी से 500 ईसा ईस्वी 15 प्रकार के दासों का विवरण दिया है। इनमें सात प्रकार के दास तो वही हैं जिनका मनु ने उल्लेख किया है, अन्य आठ प्रकार के दास निम्नलिखित हैं। नंबर एक अहिंसक, धरोहर रखा हुआ। नंबर दो ऋण दास, ऋण ना चुका सकने पर बंधक के रूप में बना दास। नंबर तीन जुए में जीता हुआ व्यक्ति। नंबर चार दासी से संभोग करने के कारण बना दास। नंबर पाँच निर्धारित समय के लिए बना दास। नंबर छह चोरों या डाकुओं द्वारा बेचा हुआ व्यक्ति। नंबर सात संन्यास छोड़कर गृहस्थी में प्रविष्ट होने वाला व्यक्ति। नंबर आठ स्वयं अपने को बेचने वाला व्यक्ति। अहिंसक दास का उदाहरण हमें मिलिंद पन्ह में मिलता है। ऋण दास का वर्णन हमें जैन ग्रंथ पिंडर नियुक्ति में मिलता है। एक स्त्री किराने के व्यापारी का ऋण ना चुका सकने पर उसके यहाँ दासी बनकर कार्य करती थी। जुए में जीते हुए दास का उल्लेख मिज्झकटिक नाटक में है। नारद के समय दासी से संभोग करने के कुछ अपराध हुए होंगे, तभी इस प्रकार के दास का वर्णन उन्होंने किया है। पराजित शत्रु अपने को जीतने वाले का दास बना लेते थे, एक वर्ष बाद उनको स्वतंत्र कर दिया जाता था। इस प्रकार के दास निर्धारित समय के लिए बने दासों की श्रेणी में गिने जाएंगे। चोर और डाकू तो बहुधा पकड़े हुए व्यक्तियों को दास के रूप में बेचते ही थे। इस काल में कुछ व्यक्ति संभवतः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, तभी उनकी दासों में अलग गणना की गई है। मनु के अनुसार तीनों उच्च वर्ग के व्यक्तियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। उसने लिखा है कि ब्राह्मण यदि अन्य वर्णों क्षत्रिय और वैश्य के व्यक्तियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध सेवा करवाए तो राजा को उस पर 600 पड़ जुर्माना करना चाहिए। इस कथन से स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जबरदस्ती दास नहीं बनाए जा सकते थे, परंतु मनु शूद्र और दास को एक श्रेणी में नहीं रखता। शूद्र का दासी से उत्पन्न पुत्र उसकी संपत्ति का अधिकारी होता था, किंतु दास के पुत्र का संपत्ति पर स्वामित्व नहीं होता। याज्ञवल्क 100 ईस्वी से 300 ईस्वी और नारद के अनुसार क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मण के वैश्य और शूद्र क्षत्रिय के और शूद्र वैश्य का दास हो सकता था। याज्ञवल्क ने प्रतिलोम क्रम से दास बनने की अनुमति नहीं दी है। कात्यायन 400 से 600 ईस्वी ने भी लिखा है कि ब्राह्मण किसी का दास नहीं हो सकता। उसके अनुसार यदि कोई ब्राह्मण संन्यास छोड़कर गृहस्थ बन जाए तो राजा उसको देश निर्वासन का दंड दे, किंतु यदि क्षत्रिय और वैश्य ऐसा करो तो उन्हें दास बनाया जाए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कात्यायन ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का पक्षपाती था। उसने यह भी लिखा है कि यदि कोई स्वतंत्र स्त्री किसी दास से विवाह कर ले तो वह उस दास के स्वामी की भांति स्वामी की भी दासी हो जाती है। याज्ञवल्क्य ने दासों की मुक्ति के लिए उदार नियम दिए हैं। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और उनके स्वतंत्र होने की शर्तों का भी विवेचन किया है। उनके अनुसार दान में मिला दास, दासी का पुत्र, खरीदा हुआ दास, संबंधियों से दिया हुआ दास केवल स्वामी की कृपा से ही मुक्त हो सकते थे। युद्ध में बंदी किया व्यक्ति अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को देने पर और भक्त दास बल की जोड़ी देने पर दासता से मुक्त हो सकते थे। दंड दास जिसे राजा ने धार्मिक तिना करने के कारण दास बनाया हो कभी मुक्त नहीं हो सकता था। अहिंसक दास धरोहर रखते समय की शर्त पूरा करने पर, ऋण दास ब्याज सहित मूलधन चुकाने पर, जुए में जूता हुआ दास अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को देने पर, दासी से संभोग के कारण बना दास उसका स्थान छोड़ने पर, निर्धारित समय के लिए बना दास अवधि पूरा होने पर, और चोरों और डाकुओं से बेचा हुआ व्यक्ति तुरंत सरकार द्वारा स्वतंत्र किए जाते थे। नारद के अनुसार संन्यास छोड़ का गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने वाला व्यक्ति और स्वयं बेचने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकते थे। यदि कोई दास स्वामी के जीवन की रक्षा करता तो उसे तुरंत मुक्त कर दिया जाता था। नारद उसे स्वामी की संपत्ति का एक भाग भी देने के पक्ष में है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वामी अपने दास को बेच सकता, किराए पर दे सकता, भेंट में दे सकता, बंधक बना सकता और दान में दे सकता था। इस काल में जीवन निर्वाह पुता पिता पुत्रों को भी दासों के रूप में बेच और बंधक बना सकते थे। कुछ व्यक्ति पेट भरने के लिए और कुछ मृत्यु से बचने के लिए स्वयं दास बनने के लिए उद्यत हो जाते थे। दासों के साथ व्यवहार। मनु के अनुसार स्वामी दास को रस्सी या डंडे से पीटकर मार सकता था। यदि वह भाग जाए तो स्वामी उसे पकड़ कर ला सकता था। उसकी गवाही स्वीकार नहीं की जा सकती जाती थी। उसके कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। मनु के अनुसार वह संपत्ति का भी स्वामी नहीं हो सकता था, किंतु मनु की सम्मति है कि स्वामी को दास पर अपने परिवार के सदस्यों की भांति ही क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि दास से कोई अपराध हो जाए तो उसका स्वामी उसके अपराध के दंड का भागी होता था। याज्ञवल्क और नारद का मत है कि दास स्वामी के लिए किसी कार्य के लिए कुछ धनराशि ऋण के रूप में ले तो वह ऋण चुकाना चाहिए। स्वामियों को दास को जान से मारने का अधिकार न था। दास के बूढ़ा होने पर स्वामी उसे निकाल नहीं सकता था। नारद के अनुसार दास के अपने कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। उसने लिखा है कि दासी यदि चोरी करे तो उसके आधे पैर काट दिए जाएं। याज्ञवल्क स्मृति से स्पष्ट है कि कुछ धनी स्वामी दासियों की इच्छा के विरुद्ध भी उनके साथ गमन करते थे। उन्हें केवल 10 पर दंड देना होता था। संभवतः कुछ व्यक्ति दूसरे स्वामियों की दासियों के साथ भी गमन करते थे, उसे 50 पर दंड देना होता था। दंड दासी के सील और चरित्र की रक्षा के लिए नहीं दिया जाता था, अपितु इसलिए दिया जाता था कि वह दासी दूसरे की वस्तु थी और उसकी हानि हुई है। नारद के एक कथन से स्पष्ट है कि स्वामी की अनुमति से कुछ व्यक्ति धरोहर दासियों के साथ भी गमन करते थे और दासियां किराए पर भी दी जाती थी। नारद स्मृति से स्पष्ट है कि कुछ धनी व्यक्ति दासियों के साथ संभोग करते थे। कात्यायन के अनुसार यदि किसी स्वामी का किसी दासी से पुत्र हो जाए तो उसे उस दासी को दासता से मुक्त कर दिया जाता था। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस काल में दास प्रथा का बहुत विस्तार हो गया था, किंतु इस काल की स्मृतियों से स्पष्ट है कि अब दासों की दशा पहले की अपेक्षा कुछ अच्छी थी। नारद 100 ईस्वी से 400 ईस्वी, बृहस्पति 300 से 500 और कात्यायन 400 से 600 ईस्वी के विचार दासों के साथ उदारता का व्यवहार करने के पक्ष में नहीं है। नारद के अनुसार स्वामी अपने घर में राजा की तरह शासन करता है। वह परिवार में किसी भी सदस्य को दंड दे सकता है। मिच्छ कटीक से यह स्पष्ट है कि दासों के साथ व्यवहार बहुत कुछ स्वामी के स्वभाव पर ही निर्भर था। वसंत सेना अपनी दासी मदनिका को अपना मित्र समझती है, जबकि अस्थावरक का निर्दयी स्वामी उसे बांध कर रखता है और उसे बुरी तरह पीटता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कानून की दृष्टि से प्राचीन भारत में दासों के अधिकार बहुत सीमित थे। स्वामी दास को चल संपत्ति समझता था, अतः दासों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। वे जो कुछ कमाते थे वह उनके स्वामी को आय समझी जाती थी। दास स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था, अतः न्यायालय में वह किसी का साक्षी भी नहीं हो सकता था। उसका कोई विश्वास नहीं करता था। हाँ, स्वामी को उसका जीवन समाप्त करने का अधिकार न था। नंबर 6, गुप्तोत्तर का लगभग 600 ईसा से 1200 ईस्वी। दासों के कार्य। इस काल में भी अधिकतर दास का घर काम का काज करते थे। मेघातिथि 825 से 900 ईस्वी ने सेवक के कार्य को परिचर्या कहा है और दास के कार्य के अंतर्गत निकृष्ट कर्म करना और जहाँ स्वामी भेजे वहाँ जाना लिखा है। परिचर्या के अंतर्गत मालिश करना, परिवार और संपत्ति की देखभाल आदि काम लिखे हैं। विज्ञानेश्वर 1070 से 1100 ईस्वी ने भी उक्त भेद को स्वीकार किया है। अपरार्क लगभग 122 ईस्वी और देवर्ण भट्ट 1150 से 1225 ईस्वी ने भी भृत्य और दास के उपयुक्त भेद को माना है। इससे स्पष्ट है कि इस काल में अधिकतर दास से निकृष्ट काम ही कराया जाता था। नंबर 6, पूर्व काल की अपेक्षा इस काल में एक विशिष्ट परिवर्तन दिखलाई देता है। पहले राज्य ही अधिकतर दासों को किसी कार्य में लगा था, बहुत कम दास किसानों की कृषि कार्य में सहायता करते थे। बौद्ध धर्म के संरक्षक राजाओं में बौद्ध बिहारों को काफी भूमि दान में दी। बौद्ध भिक्षु इतनी भूमि पर स्वयं कृषि करने में असमर्थ थे। इतसिंह के अनुसार कुछ भिक्षु भूमि को किसानों को कृषि करने के लिए दे देते थे और उन्हें उपज का एक भाग दे देते थे, किंतु कुछ भिक्षु अत्यंत लोभी थे। वे दास और दासियों से स्वयं खेती करवाते थे। इसका यह अर्थ है कि इस काल में कृषि दासों की संख्या बहुत बढ़ गई और जब भूमि बेची जाती तो उसके साथ वे दास भी बेच दिए जाते थे। नंबर का हेमचंद्र कृत त्रिषष्टी श्लाका पुरुष चरित्र 12वीं शताब्दी से ज्ञात होता है। इस काल में भी दासियां कूटना, पीसना, पानी भरना, घर में झाड़ू लगाना, घर को गोबर से लिपना आदि कार्य करती थी। लेख पद्धति लगभग 1230 ईस्वी में दासियों के अन्य कारों का वर्णन भी मिलता है, जैसे कि तरकारी काटना, मसाला पीसना, लकड़ी लाना, घास काटना, दूध दूहना, दही से मक्खन निकालना, भोजन बनाना, मालिक के हाथ पांव धोना, दासी दासियां स्वामी के परिवार के लोगों के मल मूत्र भी उठाती और खेतों में हल चलाना आदि कृषि कार्य करती थी। घा मिघा तिथि ने ऐसी दासियों का उल्लेख किया है जो उपभोग के लिए रखी जाती थी और जिन्हें भोजन और वस्त्र दिया जाता था। विज्ञानेश्वर 1017 ईस्वी से 1100 ईस्वी ने ऐसी दासियों को अवरुद्धा और भुजिष्या कहा है। लेख पद्धति में इन दासियों के अंग प्रत्यंगों का विशद वर्णन है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभिजात वर्ग के लोग जिन दासियों का उपभोग करते थे वे रूप और यौवन संपन्न होती थी। लेख पद्धति में दस्तावेजों के जो प्रारूप दिए हैं उनमें दासियों के जिन कार्यों का वितरण है उससे स्पष्ट है कि बहुत सी दासियों का प्रयोग उपपत्नियों अर्थात रखेल स्त्रियों के रूप में किया जाता था। इस काल में दास राजाओं, सामंतों, अभिजात वर्ग के व्यक्तियों की सेवा तो करते ही थे। बौद्ध विहारों और वैष्णव शैव और शाक्त मंदिरों में भी अनेक दास कार्य करते थे। 7वीं ईस्वी से पूर्व ही कन्याओं को देवदासी के रूप में मंदिरों की देने की प्रथा विद्यमान थी। राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है कि कश्मीर के मंदिरों में 7वीं शताब्दी में अनेक देवदासियां रहती थी। दक्षिण भारत में अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वहां भी मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थी। चोल नरेश राजराज प्रथम ने अपने मंदिरों को 400 देवदासियों की सेवाएं अर्पित की थी। दासों के प्रकार, विज्ञानेश्वर ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। उनमें से निम्नलिखित प्रकार के दासों का वर्णन तत्कालीन साहित्य में भी मिलता है। नंबर एक, कृतदास। खरीदे हुए दासों के संबंध में अनेक कथाएं, उपमिति, भाव प्रमंच कथा लगभग 906 ईस्वी, समराज्य कहा और प्रबंध चिंतामणि आदि जैन ग्रंथों में मिलती है। इनसे ज्ञात होता है कि इस समय दासों का व्यापार नियमित रूप से होता था। उपमिति भाव प्रपंच कथा में स्पष्ट लिखा है कि अनेक आदिवासी भील दासों का व्यापार करते थे। अनेक मंदिरों के अधिकारी देवताओं की सेवा के लिए धन देकर दास खरीदते थे। प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि वीर धवल के मंत्री तेजपाल ने मनुष्यों के अपहरण पर रोक लगा दी थी, क्योंकि गुजरात में इन्हें दास के रूप में बेचकर विदेशों को भेजा जाता था। लेख पद्धति लगभग 1230 ईस्वी से ज्ञात होता है कि अन्य वस्तुओं की भांति दासों का भी निर्यात होता था। उसमें लिखा है कि एक दासी 504 बिसल प्रिय ध्रम में खरीदी गई। इसके द्रम्भ में खरीदी गई, इसके लिए लिखित दस्तावेज बनाए जाते थे। नंबर दो, ऋण दास। कभी कभी ऋण ना चुका सकने पर ऋणी स्वयं ऋण देने वाले का दास बनना स्वीकार कर लेता था। विज्ञानेश्वर ने इस प्रथा का अनुमोदन किया है। नंबर तीन, स्वयं विक्रयी। सामंतों के पारिवारिक युद्धों, मुसलमानों के आक्रमणों और दुर्भिक्षों के कारण जब अनेक व्यक्ति अपना भरण पोषण नहीं कर पाते थे तो अपने को बेच डालते थे। जीमित वाहन 1000 से 1150 से ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति के पास भोजन व कपड़ा नहीं होता था वह अपने को दासी की भांति बेच सकता था। दक्षिण भारत में अनेक निर्धन व्यक्ति जो अपनी उदर पूर्ति नहीं कर पाते थे दुर्भिक्ष के समय स्वयं मंदिरों में दास हो जाते थे। लेख पद्धति के स्वयं गत दासी पत्र से ज्ञात होता है कि एक निर्धन राजपूत की पुत्री ने हाथ जोड़कर एक वैश्य से प्रार्थना की कि उसे दासी बना लिया जाए। उस बनिए ने नगर के चौराहे पर चारों वर्णों के लोगों के समक्ष उसे दासी के रूप में स्वीकार किया। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि गुप्तोत्तर काल से भारतीय समाज का नैतिक स्तर बहुत गिर गया था। मौर्य काल में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को दास बनाना अपराध समझा जाता था। यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक कठिनाइयों के कारण अपने को दास के रूप में बेच देता था तो उसकी जाति के लोग आवश्यक धन जुटाकर उसे दासता से मुक्त करा लेते थे। इस समय चारों वर्णों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक भी व्यक्ति ऐसा ना निकला जो उस क्षत्रिय कन्या को आवश्यक धन देकर उसे दासता से मुक्त करा लेता। क्षत्रिय होते हुए भी उसने अपने से नीचे वर्ण अर्थात वैश्य की दासी होना स्वीकार किया, क्योंकि बिना ऐसे किए वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थी। इसका यह अर्थ है कि इस काल में आत्मविक्रयी दासों की संख्या काफी अधिक हो रही होगी। नंबर 4 ध्वजाहत। इस समय सामंतों के पारस्परिक युद्ध में जीतने वाला सामंत विजित सामंत के योद्धाओं को ही बंदी नहीं बनाता था, वह विजित सामंत की प्रजा के अनेक स्वतंत्र व्यक्तियों को भी बंदी बना लेता था। इन सभी व्यक्तियों को दास के रूप में कार्य करना पड़ता था। युद्ध में बंदी बनाई गई अनेक महिलाएं दासियों के रूप में कार्य करती थी। 1197 में जब मुसलमानों ने गुजरात पर विजय किया तो तब उन्होंने 20,000 भारतीयों को दास बनाया था। इसी प्रकार जब उन्होंने कालंजर को विजय किया तो 50,000 भारतीय दास बनाए गए थे। परंतु मुसलमानों के समाज में दासों की स्थिति हिंदू समाज में उनकी स्थिति की अपेक्षा अच्छी थी। मेघातिथि अपरार्क 1100 से 1200 ईस्वी और देवन्न भट्ट का मत है कि ब्राह्मण कभी किसी का दास नहीं हो सकता। कथा सागर 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने लिखा है कि चार व्यापारी दास बना लिए गए थे, बाद में धन देकर वे स्वतंत्र हो गए। दासों के साथ व्यवहार। मेघातिथि 825 से 900 ईस्वी के अनुसार स्वामी को अपने दास उसकी पत्नी और पुत्र से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसने लिखा है कि दास का भी संपत्ति पर अधिकार है। उसका यह आशय है कि वह अपने स्वामी की अनुमति से उस संपत्ति का भोग कर सकता है। मनु ने जो यह लिखा है कि स्वामी दास को रस्सी या बांस से पीट सकता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर समय अपने दास को बांस या रस्सी से पीटे। यह दास को अनुशासन में रखने के लिए मनु का सुझाव मात्र है। डांट फटकार से भी काम चल सकता है। दंड से तभी पीटना चाहिए जब अपराध महान हो। इससे स्पष्ट है कि मेघातिथि का दासों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। मानसोल्लास 1126 से 1138 ईस्वी में भी कहा गया है कि जो अपना यह लोक और परलोक सुरक्षित रखना चाहता है उसे दास का भरण पोषण और उसकी रक्षा करनी चाहिए। परंतु ऐसे सहानुभूतिपूर्ण विचार कुछ लोगों के आदर्श दृष्टिकोण को ही व्यक्त करते हैं। वास्तविकता इससे भिन्न थी। सामान्यतः दासों की स्थिति बहुत खराब थी। त्रिषष्टी सला का पुरुष चरित्र से ज्ञात होता है कि दासों को भारी बोझ उठाने पड़ते थे। वे भूखे पासे रहकर काम करते थे और उन्हें गधों की भांति पीटा जाता था। सबसे अधिक दुर्दशा दासियों की थी। उन्हें दिन रात सर्दी गर्मी वर्षा प्रत्येक ऋतु में हर समय कठिन परिश्रम करना पड़ता था। लेख पद्धति से यह स्पष्ट है कि भागने वाली चोरी करने वाली तथा स्वामी और उसके संबंधियों के आदेशों की अवहेलना करने वाली तथा निंदा करने वाली दासी को स्वामी बांध और पीट सकता था। यदि मारने के कारण दासी की मृत्यु भी हो जाए तो उसका स्वामी केवल गंगा स्नान करके पाप मुक्त हो जाता था। जीवित वाहन 1100 से 1250 ईस्वी ने लिखा है कि एक दासी कई व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति के रूप में मिली हो तो उसे बारी बारी से सबकी सेवा करनी चाहिए। 10 वैकालिक सूत्र पर हरिभद्र की टीका से ज्ञात होता है कि दासियों के पुत्र समाज पर भार समझे जाते थे। लेख पद्धति में स्वामी के अधिकारों और दासों के कर्तव्यों का तो स्पष्ट उल्लेख है, किंतु दास दासियों के अधिकारों का कोई विवेचन नहीं है। उनको भोजन वस्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता था, अतः धनोपार्जन के करके स्वतंत्र होने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। विज्ञानेश्वर ने 1017 ईस्वी से 1100 ईस्वी 15 प्रकार के दासों की मुक्ति का विवेचन किया है, किंतु यह कहना कठिन है कि व्यवहार में दासों के स्वामी मुक्ति के इन सभी नियमों का पालन करते थे या नहीं। दासों या दासियों के साथ व्यवहार उनके स्वामी के स्वभाव पर भी बहुत कुछ निर्भर था। तिलोय मूर्ति अभिलेख से ज्ञात होता है कि नायक प्रताप धवल तीर्थ यात्रा पर अपनी 4 दासियों को भी ले गया था। इसी अभिलेख में उनका उल्लेख होने से स्पष्ट है कि उन पर उनके स्वामी की कृपा दृष्टि थी। मूल्यांकन। इस काल में दास प्रथा के विस्तार के अनेक कारण थे। सामंतों की लूट खसोट और मुसलमानों के आक्रमणों के कारण देश की आर्थिक दशा खराब हो गई थी। जब दुर्भिक्ष पड़ते थे तब मनुष्यों को प्राय अपना निर्वाह करना कठिन हो जाता था और वे अपने को स्वयं बेच देते थे। सामंतीय युद्धों में बंदी किए गए व्यक्तियों से भी दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। समाज का नैतिक स्तर गिर जाने के कारण मानव की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई थी। ऐसी दशा में दासों की स्थिति पूर्व काल की अपेक्षा अधिक खराब होना स्वाभाविक था।